अब आप देखिए, ना सुनने वाले अल्लाह ताला की निगाहों में कैसे हैं। आयत 22, इन शर्रत दवा भी इन दल्लाही, यकीनन तमाम चौपायों में अल्लाह के नजदीक बदतरीन वो है कौन, अस्सुमुल बुकमुल लजीन ला याकिलून, वो बहरे गूंगे जो अकल से काम नहीं लेते। अल्लाह अकबर। इन शर्र, शर कहते हैं बुरे को, सबको पता है। दवाब जो है ना, दाब बतुन से, दवाब लफ्ज असल में हर चलने वाले को कहते हैं, जैसे क्रॉलिंग इंग्लिश में आप कहेंगे ना तो क्रॉलिंग, लेकिन अरबी जुबान में हर मूविंग क्रिएचर को दाबा कहते हैं। कुरान में लफ्ज दाबा भी आता है, यहाँ दबाब आ रहा है, ठीक है। यानी मुराद ये है कि चलने फिरने वाली मखलूक में से हर मखलूक में से सबसे बदतरीन अल्लाह की नज़र में वो गूंगे बहरे इंसान हैं जो अकल नहीं रखते। बज़ाहर आपको क्या लगा है कि यहाँ अल्लाह ने जानवरों की बात की है? नहीं, यहाँ अद दवाब से मुराद इंसान है। आप इसको उर्दू में ज़रा और खोल के तर्जमा आपके सामने रख देती हूँ, समझ जाएंगे इंशाल्लाह कि इस मखलूक दुनिया में तमाम मखलूकात में बदतरीन वो मखलूक है, वो इंसान जो बहरे और गूंगे हैं। कौन से? कानों से ना सुनने और आंखों से ना देखने वाले? नहीं, अल्लज़ीन ला याकिलून, जो अकल की आंखें और अकल के कान बंद रखते हैं। सीधी सी बात है कि यहाँ मुनाफिक को बदतरीन जानवर कहा गया है। ऐसा इंसान जो सुन के भी ना सुने वो क्या? देखिए मैं बोल रही हूँ ना, आपको मेरी बात समझ आ रही है? बिलफर्ज इधर बाहर पीछे हॉल में कहीं बिल्ली होती, वो भी ऐसे ही सुनती जैसे आप सुन रहे हैं। आपने भी सुन के झटक दिया, उसको तो बेचारी को समझ ना आई, तो आप में और बिल्ली में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना। तो जानवर सुनता है, कोई रिएक्शन नहीं लेता, कोई एक्शन नहीं शो करता। तो अगर इंसान सुने और कोई एक्शन ना शो करे तो आप उसको क्या कहेंगे? अच्छा, जानवरों को भी देख लीजिए, कई किस्म के होते हैं। सारे छुपाए और जानवर बुरे नहीं, जानवर अपनी जगह हर एक अच्छा है। पीछे कुत्ते की मिसाल पड़ी, लेकिन कुत्ता अपनी जात से बहुत अच्छा है। गधे की मिसाल ले लीजिए, सूरत जुमा में आती है, गधा अपनी जगह बहुत है। हाँ, इंसान गधा बने तो बात गलत है, ठीक है। अब आप देखिए कि जो जानवर होते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं। मसलन कुछ जानवर ऐसे हैं कि जो कायनात से नेमते पाते हैं, चारा खाते हैं, जो भी आप उनको तूड़ी भूसी खिलाते हैं उसके बाद क्या देते हैं? वो दूध देते हैं। कुछ जानवरों का गोश्त हम मीट के नाम पे खाते हैं, हम तो उनकी खाल ओजड़ी और उनके सिरी पाए तक खा जाते हैं, है ना। जानवर भी अच्छे हैं। गोया के कुछ जानवर ऐसे हैं कि उनको जो बेकार खराब चीज़ें भी दे दो वो उसका बहुत अच्छा काम देते हैं, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिन पे हम सवार होते हैं, पीछे पढ़ चुके हैं सूरत अलनाम में, आगे सूरत नहल में बहुत तफसील से पढ़ेंगे जानवरों की बातें, ठीक है। अब आप बताइए कि जानवरों में से ये जानवर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं ना आप उनका गोश्त खा सकते हैं, ना आप उनका दूध पी सकते हैं, ना आप उन पर सवारी कर सकते हैं, वो किसी काम के नहीं बल्कि दरिंदा सिफत हैं। जब उनको मौका मिलता है वो इंसान को खा जाते हैं। अल्लाह ने यहाँ इन नशरत दवाब उनसे मिसाल दी है कि जानवर नहीं, जानवरों में से भी दी वर्स्ट जानवर। मसलन आप देखिए, जैसे नाम जैन में आ रहा गेंडा, हमने नहीं कभी उसका कोई फ़ायदा सुना, या गिद्ध, सुअर, पिक। अब ज़ाहर हमें इनका कोई फ़ायदा नहीं दिखता ना, ठीक है, ये कायनात की गंदगी खा रहे हैं। आपको पता है कि पिक क्या है? स्वीपर है, वो आपका जमादार है। सब गंदे जानवर जो लाशें पड़ी होती हैं, चूहे बिल्लियां मरी हुई, ये खा जाता है, ये जमादार है कायनात का। तो अब वो हमें इंसानों को तो कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। तो मुनाफिक दूसरों को फ़ायदा नहीं देता, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको यहाँ जानवर के बराबर कर दिया। ये लोग ज़मीन का कूड़ा किरकट है जो बिलाखिर जहन्नम में डालकर जला दिया जाएगा। देखिए ना, यहाँ नमाज की बात है, ना रोजे की बात है, ना हज की, यहाँ बात हो रही है सुनने की और सुनाने की। क्योंकि ये रूट कॉज है जिसकी बुनियाद पे लोग नमाज नहीं पढ़ते। जो बंदा आज नमाज नहीं पढ़ता, ज़कात नहीं देता, रोज़ा नहीं रखता, उसकी बहुत बड़ी वजह यह कि ला यस्मऊन, वो सुनते नहीं है। कहीं ना कहीं से तो सुनना पड़ेगा ही ना। پیچھے آپ پڑھ چکے یہی بات سورت البقرہ میں، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. ایک جگہ آپ پڑھ چکے سم بک من امجن فہم لا یرجیون، 19ویں شاید 20ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی. پیچھے بھی آپ پچھلی سورت میں پڑھ چکے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بھا، سورت الاعراف، کہ دل تو ہیں لیکن اس سے غور نہیں کرتے. پیچھے پھر پڑھ چکے اولائک کل انعام بل ہوا عدل اولائک ہم الغافلون، یہ تو جانور ہے بلکہ جانوروں سے بھی گمراہ بلکہ یہ تو غافل ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کے اوپر اتنی غفلت کیسے آتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم پہ پیدا کیا ہوا انسان دواب کیسے بن جاتا ہے؟ آپ کہہ لیجئے کہ انسان چوپایا یا جانور کیسے بن جاتا ہے، تو اس کی کچھ وجوہات ہے، لکھ لیجئے اور ہم اپنے آپ کو اس ٹیسٹ میں سے ضرور گزاریں کہ کہیں میرے اندر ایسی کوئی غفلت تو نہیں آئی بھی. سب سے پہلی غفلت کی وجہ سستی، لیزینس. اس طرح سے سست بنے بیٹھے ہیں، صرف سستی. دیکھیے بعض لوگ بظاہر میں منافق لگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ منافق نہیں ہوتے، سست ہوتے ہیں، لیزی. پڑھیں گے سورۃ توبہ میں ایسے سست لوگوں کی کہانیاں کہ پیچھے رہے تو اللہ نے ان کو پھر پیچھے ہی کر دیا. دوسری وجہ ہوتی غفلت کی یقین کی کمی. مثال ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ فجر کی نماز مسجد میں آ کے اگر آپ نے پڑھ لی جماعت سے، اور عشاء کی جماعت آپ نے فرض پڑھ لی، سارا دن آپ اللہ کی حفاظت میں رہے. سوچیے کہ ایک لمحے کے لیے، حدیث ہے عشاء کی جماعت سے نماز پڑھنے والا پھر فجر کی بھی جماعت سے پڑھے گا تو وہ پورا دن اللہ کی حفاظت میں آ گیا، یعنی جسٹ اللہ کی سیکیورٹی میں. اب یہ ایک بات اللہ کے نبی کی ہے، اور باقی تو چھوڑ دینا کہ ایک کے 27 ثواب ہیں، وہ تو آخرت میں ملنے ہیں، ہمیں تو دنیا کی باتیں بتاؤ. ٹھیک ہے، بتا دیا، اور بھی بہت سارے دنیا کے فائدے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو فجر کی جماعت کے ساتھ، کیوں نہیں کوئی اٹھتا؟ کیوں غفلت چھائی ہوئی ہے؟ کیوں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز بھی نہیں جگاتی؟ کیونکہ یقین کی کمی ہے. اگر ایک اعلان ہو جائے کسی شہزادے یا کسی بادشاہ کی طرف سے سعودیہ سے کہ میں اس ملک کی ہر مسجد میں فجر کی نماز کے لیے آنے والوں کو ہر دن کی نماز پہ 100 پاؤنڈ اپنی طرف سے تحفے میں دوں گا، کتنے آئیں گے؟ اور 100 پاؤنڈ کو 1000 پاؤنڈ میں بدل دیں، اور اگر یہ حکم ہو کہ ہر قدم پہ اس کے ہیرے موتی بچ جائیں گے، آئیں گے نا؟ تو یقین کی کمی ہے. میں مانوں نہ مانوں، میں آج جس نیکی کو پیچھے کر رہی ہوں میرے اندر یقین نہیں ہے. میں کہتی تم کر لو، میں نہیں کرتی. جو آپ کر لو میں بڑی خوش، آپ کری جائیں، آپ پہلے کریں، کیونکہ یقین کی کمی ہے. حجاب کرنا مشکل ہے بہت سب کو. کوئی کہہ دے کہ جو لڑکی حجاب کرے گی اس کے سر پہ ہیروں کا تاج رکھا جائے گا، تو کتنے پہنیں گے؟ حجاب کرنے والی کو رات کو اپنے سر کے اوپر سے کچھ موتی ملیں گے، تو یقین آ جاتا ہے نا. یہ آج واللہ یہ دنیا کا یقین ہی تو ہم سب کو سارا دن چلاتا بھی رہتا ہے. کتنی مار کھاتے ہیں ہم، کتنا رلتے ہیں اس دنیا کے پیچھے، اس یقین کی بنیاد پہ جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. تو غفلت کی وجہ یقین کی کمی ہے. بہم بالآخرتی یوقنون، اور آپ کہتے ہیں کہ یقین ایمان کا آخری درجہ. اگر 100 سیڑھیاں نا تو ایمان سے چڑھتے ہوئے آخر میں جائیں گے تو یقین. کانہ کا تراہو، ایسے اللہ کو دیکھے جیسے سامنے کھڑا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد آ گیا، کہتے کہ اگر اللہ غیب کے پردے پھاڑ کے میرے سامنے بھی آ جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ آج بھی اتنا ہی یقین ہے. اللہ میں یہ یقین دے دے. یہ ہے وہی بات کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. آج یقین کی کمی اس لیے سو رہے ہیں، اس لیے یہ نیکیوں کے موتی نہیں چن پاتے، صرف لیئر ہے. بہت سارے لوگ صرف اس لیے قرآن کے لیے نہیں آتے کہ وہ سست ہے. مان لیجیے منافق بہت تھوڑے ہیں، غفلت ہے یہ تو مانتے، اس میں تو کچھ شک ہی نہیں. غفلت کی وجہ یا سستی ہے یا یقین کی کمی ہے. تیسری پہ چلیے، ہم سب اپنے دل کے چور ڈھونڈیں گے ادھر سے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، حب دنیا، حب دنیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہن سے بنا مانگو، کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا حب دنیا و کراہیت الموت، دنیا سے پیار اور موت سے کراہت. سچ بتائیے آج ہے دنیا کی محبت؟ لو آف دنیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ حب دنیا راسو کلی خطیہ یا من کلی خطیہ، दुनिया की मोहब्बत हर गुना की जड़ है। आप बैठ के ना अकेले में ये जो आपको 5-6 पॉइंट्स लिखा रही हूँ इसके ऊपर खुद को परखिएगा। इस वक्त कोई किसी दूसरे को प्लीज ना सोचे कि हाँ मेरी फलां दोस्त ऐसी और मेरी फलां रिश्तेदार ऐसी है। आप और मैं खुद को सोचे कि कहीं मैं तो नहीं इसमें फंसी हुई। फिर तीसरी चीज, चौथी चीज, गफलत की वजह, ख्वाहिशात की मोहब्बत, लव ऑफ डिजायर्स। दुनिया की मोहब्बत और चीज है, बिल्कुल फर्क है, लेकिन ख्वाहिश तो लस्ट है, हवा खुदन के मुकाबले में। वही बात है, ये जिनकी जिंदगी का मकसद ही ग्लैमर है, मजा, ऐश, मौज, मस्ती, इसीलिए गफलत है। कभी देखा करे लोगों को मुंह सर उठा के जब वो फिरते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे शायद इनसे ज्यादा दुनिया का हरीस कोई नहीं। वही पीछे आयत पढ़ी चुके हम, राल टपकती रहती है हर वक्त दुनिया की चीजों को देख के। जरूरत की चीज लेनी है और 2-2 महीने सोच सोच के बंदा गुजार देता है। छोड़ो, गुजारा हो रहा है होने दो, नहीं हो रही होने दो, टूटी है जागने दो। और क्या ये हो कि नहीं क्या आई है, जरा चेक करूं आजकल ब्रांड क्या नए, नहीं क्या आई, इसको दे दो किसी को, मैं नहीं पकड़ लूं, ये है ख्वाहिश। फर्क है दोनों में। मोहब्बत दुनिया की बाज दफा जेन्युइन भी होती है, लेकिन ख्वाहिश की मोहब्बत उससे अगली है। यानी आप कह लेंगे नीड्स को वॉन्ट्स बना लेना या वॉन्ट्स को नीड्स बना लेना। आज आई वॉन्ट इट दिस, कल कहना आई नीड इट। 70 किस्म की चीजें अपने लिए रखी होती हैं जिसको अपनी इतनी जरूरी नीड बना ली है कि उसके बगैर चल ही नहीं सकते। उसके बाद पांचवी वजह, मनमानी करना। मैं ना मानू किसी की, मेरी मर्जी, इट्स माई लाइफ स्टाइल, इट्स माई लाइफ। मुझे डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज, मुझे ना तंग करें आप, बस मुझे पता है सब, शुक्रिया आपका, मैं गाफिल नहीं हूं, मुझे सब पता है। मनमानी ये मिजाज में होती है, इसको पीछे हम पढ़ चुके हैं सूरत निसा में, नशूस कहा गया है। बीवी का जब शौहर के मामले में होता है ना तो ये नशूस होता है, नशाजा। और अल्लाह के मामले में तो हम सभी देख सकते हैं कि ये कैसा है, उठान, उबाल है अंदर, जोश है, जो मर्जी अल्लाह कहता रहे मैं नहीं मानती। फिर अगली वजह, अच्छा ऐसा बंदा जो होता है ना, इसकी एक अलामत है, ये किसी दूसरे को अहमियत ही नहीं देता, लेट डाउन करता है। अंदर इसके एक ऐसी चीज समाई हुई है कि खुद को अकले कुल समझता है। दूसरे की बात चुप कर भी जाएगा ना सुन के, बड़ा समझ के, या कोई कह देता है बाप चुप कर जाए, तो उस वक्त भी अंदर इसका दिमाग के चौके लगा रहा होता है, हाँ इनको क्या पता, ये कल के बंदे, इनको, ये पाकिस्तान से आए, इनको क्या पता हम वेस्ट में रहते हैं, ये स्टाइल, इनको क्या पता इस सोसाइटी में कैसे जीना है, इनको क्या पता हमारे क्या प्रॉब्लम है। यानी ऐसा बंदा सबसे ज्यादा अपनी सुन रहा होता है। छठी एक और वजह भी होती है गफलत की, और वो क्या है, किसी चीज की मोहब्बत में चूर होना। मिसाल है, एक लड़की किसी लड़के की मोहब्बत में चूर हो गई, गफलत, नफे नुकसान के एहसास से आ रही। मसला आप देखिए कि जैसे हम इस वक्त सुनने की बातें कर रहे हैं ना, अल्लाह का दीन, किताब, अब आप इसको सुनना चाह रहे हैं, लेकिन आप किस चीज की मोहब्बत में चूर हैं, आपको शॉपिंग का क्रेज है। और आपको पता है कि मेरे बच्चे इसी वक्त ही स्कूल गए होते हैं, अगर मैं क्लास में आके बैठ गई तो शॉपिंग कब करूंगी, शाम को तो फिर एक और ही सिलसिला शुरू होना है। तो वो शॉपिंग के नशे में चूर चीज आपको गाफिल कर देगी इस चीज के फायदे से। वहां तो घूम फिर के पता नहीं कुछ मिलता है, नहीं मिलता, महंगा मिलता है, सस्ता मिलता है, लेकिन यहां से तो बाहर बंदा महरूम होता है। याद रखिए, हमेशा इंसान वही बात सुनता है जिसमें उसकी दिलचस्पी हो। तो अगली वजह, सातवीं वजह लिख लीजिए गफलत की, दिलचस्पी का ना होना। आप कभी बच्चों की बातें करें ना तो आपको लगता है बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे, वो खेल रहे हैं। ज्यों ही आप उनका नाम लेंगे ना तो एकदम वो खड़े हो जाएंगे, क्या कहा आप मेरी बात कर रही हैं। तो इसका मतलब कि वो पास बैठे सुन तो रहे होते हैं, अपने नाम से दिलचस्पी थी तो उनके कान खड़े हो गए। बिल्कुल इसी तरह से कुरान सुनने से उसी बंदे का दिल खिलेगा जिसका दिल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में चूर होगा। मूड बदल जाते हैं ना जब हम ये बातें नहीं सुनते। अब अल्लाह सुबहाना ताला आगे देखिए जरा अपना इंतकाम ले रहा है। ये सुनने का मौजू पूरा करके इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, आपको भी मौका दूंगी कि जब बंदे का ये एटीट्यूड हो जाए तो अल्लाह क्या करता है। अल्लाह सुबहान ताला को कोई शौक नहीं है कि मैं उसकी बातें सुनूं, अल्लाह के सुनने वाले बहुत हैं, और ना अल्लाह को ये शौक है कि मैं सुनाऊं, उसकी बातें सुनाने वाले बहुत हैं। ये आयत 23 को आप सब ने अपने हाथ से बाद में अपने नोट्स में लिखना है कि अल्लाह किन को नहीं सुनवाता और किन को सुनवाता है। وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے، لَسْمَعَهُمْ، تم ان کو ضرور سنوا دیتا. اللہ اکبر، اللہ نہیں سنواتا کیونکہ خیر ہی کوئی نہیں، ملنا ہی کچھ نہیں ان کو سنوا کے، اندر بھوسی بھری ہوئی ہے، گندگی بھری ہوئی ہے. اور بالفرض وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ انہیں بھلائی کے بغیر سنوا بھی دیتا، یعنی ان کے اندر بھلائی کوئی نہیں تھی، پھر بھی کسی کے کہنے پہ پکڑا پکڑو کے بٹھا بھی دیے جاتے، وَهُمْ مُرِيدُونَ، تو بھی وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹ پھیر جاتے. یعنی ایسے بے خیرے لوگوں کو اگر کبھی سنوا بھی دیا جاتا، بات کا موقع دے بھی دیا جاتا، تو یہ کبھی نہ سنتے. ایسے لوگوں کے سننے سے کبھی خیر نہیں نکلتی. اب آپ ذرا سوچ کے دیکھیے، یہ اللہ کا انتقام نہیں ہے کہ وہ بندہ جو بات سننا نہیں چاہتا اللہ اس کو کیوں سنوائے؟ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ایک بندے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اندر سے کیسا ہوں. یہاں پہلے اللہ کے نبی کی ایک حدیث نوٹ کر لیں. آپ نے فرمایا کہ ہر 100 لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ کام کا ہوتا ہے، اور یہ آپ اوپر میں اپنے مشاہدے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے پورے خاندان کو دیکھیے، 1000 لوگ ہوں گے آپ کے خاندان میں ماشاءاللہ، مثال صرف سمجھنے کے لیے. لیکن اگر آپ ان میں سے بڑے جینیس، نائس، انٹلیکچوئل دیکھیں نا، تو انہیں 1000 میں سے بمشکل 10-12 لوگ ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، ایسے ہی جو آپ کے فیوریٹس ہیں. ہر 100 میں سے ایک. آپ نے فرمایا جیسے ہر 100 اونٹوں میں سے ایک اونٹ کام کا ہوتا ہے، باقی سب بیکار ہیں. تبھی تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈال دو اور ایک جنت میں ڈال دو. اس کو سن کے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فکر نہیں کرو، یاجوج ماجوج بھی اسی میں آتے ہیں. تو اب آپ اور میں دیکھیں کہ میں کہاں کھڑی ہوں. ہم تو اپنے آپ کو بہت سمجھے ہوئے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ خیر جس دل میں ہوتی ہے وہاں بات بنتی ہے. دیکھیے میں آپ کو چند مثالیں دینا چاہوں گی، شاید آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے. کوئی بھی جیولوجسٹ ہے، زمین کو کھودتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کی مٹی میں سونا ہے، کہاں کی مٹی میں تیل ہے. بلکہ ایک دفعہ ہماری ایک بردر سے ملاقات ہوئی، انہوں نے میں بہت جبھی وزٹ کرائی تو بہت سارے فیکٹس بتائے، جس کو سن کے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ زمین کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو تیل ہوتا ہے نا زمین میں، یہ اندر گھومتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے. ہم لوگ کہیں سے بھی سمی تیل ڈھونڈنا ہو تو پہلے ادھر سے کھدائی کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جب ہم کھدائی کرتے ہیں تو وہاں تیل ہوتا ہے. اگر ہم اس پروجیکٹ کو تھوڑا سا پوسٹپون کر دیں کچھ مہینے سال، تو کھدائی کریں گے تو وہاں نہیں ہوتا. یہ اندر پائپوں کی طرح پتہ نہیں کدھر سے کدھر گھوم رہا ہے، یہ اللہ کی بات ہے. اس طرح کے اور بہت سارے فیکٹس انہوں نے بتائے. وہ کہتے ہیں کہ جتنا یہ تیل مہنگا یا یہ آئل جو بھی چیزیں نا، آپ کو تیل تو مفت ہے، اللہ نے دیا نا، کوئی پیسے تو نہیں زمین سے. اس کا سارا جو خرچہ ہے نا، صرف اس بات کو ڈھونڈنے کے کہ کہاں کھودے. ایک جیولوجسٹ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ایسی زمین کو کھودنے میں جہاں تیل نہ ہو. تو کیا اللہ اس بندے کو دین دے گا جس کے اندر خیر کوئی نہیں؟ اب آپ کو آج اپنی ویلیو سمجھ آ رہی ہوگی، اور دعا کریں یہ ویلیو موت تک رہے. اللہ جب تک بندے کے اندر خیر دیکھتا ہے، اللہ اس کو اپنی طرف بلاتا ہے. جس بندے میں خیر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پلیز یو کین گو ہیڈ، چھٹی کرو، پلیز جاؤ، تھوڑا سا موڈ چینج کرو، جو ذرا فریش ہو جاؤ. تم بہت تھک نہیں گئے ہو؟ بہت تمہارے اوپر بوجھ ہے، بہت سٹریس ہے، بہت پڑھتے لکھتے رہتے ہو، ٹیسٹ ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد ایک اسائنمنٹ. جاؤ ذرا تم ریلیکس ہو کے آ جاؤ. اللہ بہانے سے اس کو ادھر ادھر کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کو بلائے گا جب اس میں خیر ہوگی. پھر اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں. اردو کا ایک محاورہ ہے کہ ان تیلوں میں تیل نہیں. سنا کبھی آپ سب نے بھی جوس نکالتے ہوئے ان اورنجز کو بلینڈر میں اور جوسر میں ڈالنے کی کوشش کی جو دیکھنے سے بھکلے لگ رہے ہوں؟ کاٹا تو اس کے اندر صرف اس کا فائبر ہی ہے. آپ کہتے ہیں اس میں سے کیا نکلنا ہے، میں اس پہ کیا محنت کروں؟ ہاں، تو اللہ ان دلوں کو اپنے کتاب کے لیے چنتا ہے جن میں خیر ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی ابتدائی جد و جہد میں تھے، جس میں آج کل آپ سب ہیں، آپ کے لیے ہم سب، اتنا اسلام کمزور تھا کہ ضرورت تھی کوئی ایک اسٹرانگ بندہ اسلام میں آ جائے. क्योंकि एक आ जाता है ना मशहूर बंदा या बड़ा बंदा या इन्फ्लुएंशियल, तो उसके पीछे चार आ जाते हैं, और एक जाता है तो 10 चले भी जाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने हाथ उठा दिए, ए अल्लाह इस्लाम को उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम से मदद दे, अल्लाह इन दोनों में किसी एक को मुसलमान कर दे कम अज़ कम। उमर बिन खत्ताब और अमर बिन हशाम आपको पता है कौन है? अबू जहल। अबू जहल का नाम अमर बिन हशाम था, ये तो अबू जहल उसको इस्लाम ने नाम दिया, वो अपने आप को अबुल हकम कहता था, मैं हिकमतों का बाप हूँ, अल्लाह ने कहा तुम जाहिलों के बाप हो। अच्छा अब नबी की ये दुआ थी और इस्लाम किसको मिल गया? उमर बिन खत्ताब को मिल गया। जब सहाबी ने उमर बिन खत्ताब के हाथ में तलवार देखी और वो तलवार सांत के जा रहे हैं, कहा किधर जा रहे हो? कहा मैं खत्म करने जा रहा हूँ इस नबी को, इसने क्या घर घर में लड़ाइयाँ डाली हुई हैं, किसी की बीवी रूठी हुई है, किसी के बच्चे रूठे हुए, ये क्या फितने फितने फैला रहा है, आज खत्म करो। कहा उसकी छोड़ो, अपने घर की फिक्र करो, तेरी तो अपनी बहन मुसलमान हो चुकी है और बहन हुई भी। कहा अच्छा लो पहले फिर मैं उनको मार के आता हूँ, उम्र के लिए क्या मुश्किल में। कहा मैं जाता हूँ उनको मारने। जब गए तो देखा कि घर से आवाज आ रही है कुरान की, जो ही उमर ने तलवार से नॉक किया होगा वो घबरा गए, उनके बहनोई जो थे वो अंदर छुप गए, सईद नाम था गालिबन उनका, छुप गए क्योंकि डरते थे उमर से लोग। तो बहन ने वो कागज था एक, उस पे सहीफा लिखा हुआ था, वो पढ़ रही थी। कहा ये क्या पढ़ रही थी मुझे दिखाओ। कहने लगे नहीं बताऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। क्यों? कहेंगे तुम मुशरिक हो, तुम नजस इंदर मुशरिक यू नजस, सूरह तौबा में आता है, जाओ गुसल करके आओ फिर बताऊंगी। कहेंगे आज तक तो तू मेरे आगे कभी बोली कोई नहीं, आज कैसे बोल रही है। और इसी हाथापाई में कहते हैं कि बहन का खून निकल गया। बस वो बहन का खून क्या निकलना था, उमर के दिल का खून हो गया। एक वक्त होता है याद रखिए, हर वक्त ना बोला करें, हर वक्त ना लोगों के पीछे पड़े, जिसको भी कहना है बस उस गरम लोहे का इंतजार करें कि लोहा गरम है फिर चोट डाले। उमर के दिल की दुनिया बदल गई। कहा अच्छा लो गुसल किया, कहा सुनाओ क्या सुना रही थी। और बहन ने जब वो कुरान सुनाया सूरह तौहा, तो उमर की दुनिया बदल गई। कहा मुझे ले जाओ नबी के पास। अब जब वो नबी के पास जा रहे थे, जो बात असल में अब हमारे सबक में आ रही है कि उमर के हाथ में अब तलवार तो पहले से ही थी, दूर से सहाबी कहते मैंने उमर को आता देखा, कहने लगे मैंने तो आज सुबह या एक कल सुबह या एक आध दिन पहले नबी की जुबान से सुना है कि अल्लाह इस्लाम को उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम से मदद दे दे। कहने लगे लगता है ये उमर आए नहीं है, ये बुलाए गए। और जब उमर के हाथ में तलवार थी, सहाबा ने उनको नबी के पास आते देखा, एकदम क्योंस पड़ गया कि ये नबी के पास ऐसे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह हम इसको रोके, आपने कहा नहीं उमर को आने दो। देखिए अल्लाह के नबी ने रिस्क मोल लिया, तलवार हाथ में, दुश्मन, और उमर की दुश्मनी ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत सख्त दुश्मनी थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा आने दो, आओ उमर बैठो। जब उमर बैठे दो चार बातें, उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। बात क्या है कि नबी की दुआ तो दोनों के लिए थी, उमर के लिए क्यों कबूल हुई? इसलिए। क्या ये चांस था या अबू जहल के साथ कोई ज्यादती हुई? नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला ने ये बता दिया, वलो अलिम अल्लाह फीहिम खैरन, जो कि अल्लाह ने उमर में खैर देखी तो खैर आ गई। अबू जहल में अगर खैर होती उसको भी मिल जाना था इस्लाम। आपको कहता कि अबू जहल के आखिरी लफ्ज क्या थे? इंसान अपनी मौत पे अपना असल बोलता है, ये मान लीजिए कोई दुख कोई तकलीफ मुसीबत आएगी ना, उस वक्त जो आप बोलेंगे ना वो आप होंगे। आम हालात में तो हम बड़े पोज दे लेते हैं, आखिरी वक्त पे इसने कहा था। इब्ने मसूद जब इसके सीने पे चढ़ गए तो कहने लगे ओ चरवाहे, बड़ी ऊंची जगह चढ़ गए, फिर एक सरदार के छाती पे चढ़ा हुआ तो इस वक्त, फिर कहने लगा मेरी गर्दन यहां से नहीं काटना, यहां से काटना, मतलब मेरा सर काटोगे ना तो सर मेरा इतना नहीं काटना, गर्दन के साथ काटना ताकि पड़ी हो तो पता चले ये एक सरदार की गर्दन है। ये था इसका दिमाग, वलवालिमल्लाहु फीहिम खैरन। तो याद रखिए अल्लाह ताला का एक असूल है, जिसमें खैर होगी अल्लाह उसको मौत से पहले ज़रूर बुला लेगा अपने पास हिदायत के लिए। कभी किसी बिगड़े से बिगड़े कठोर बागी शराबी जानी पापी किसी को देख के ये ना कहें कि ये नहीं सुधरेगा, ये नहीं बदलेगी, कभी ना कहें। वल्लाह ही अगर आपने किसी के लिए ऐसा फतवा दे दिया कहीं आपके ऊपर ही ना फिट हो जाए, क्योंकि अल्लाह को पता है किस में खैर है। मैंने अपनी ज़िंदगी में मुशाहिदा किया है कुरान और सुन्नत को पढ़ने के बाद, अल्लाह ताला का एक असूल देखा है, कुछ लोग सारी जिंदगी दीन के पास नहीं आते, लेकिन इखलाकी तौर पे बड़े अच्छे होते हैं, मतलब उनके एथिक्स बड़े अच्छे होते हैं, हॉस्पिटेबल बहुत होते हैं, मेहमान नवाज बहुत हैं, लोगों की बड़ी खिदमत करते हैं, सोशल वर्क, लेकिन बिलफर्ज मिसाल है कि अपनी नमाजें पूरी नहीं या कुछ और। मैंने देखा अल्लाह उनको आखिरी उम्र में बिस्तर पर डाल देता है, 8, 10, 15 साल की बीमारियाँ। अल्लाह को पता है असल हकीकत, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, लेकिन एक अल्लाह का असूल मुझे समझ आ रहा है कि जब किसी के दिल में खैर है ना, तो अल्लाह फिर उसको दुनिया में पाक कर ही देता है। तड़प तड़प के जाता है दुनिया से बंदा, लेकिन अल्लाह कभी खैर वाले को आग में नहीं डालेगा। कभी आप और मैं किसी का आरामद चीज़ को आग लगाते हैं, तो जहन्नुम तो अल्लाह का तन्नूर है जिसमें कूड़े को जलाना है। इसीलिए आप कहते हैं कि क़यामत बदतरीन मखलूक पे आएगी। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अपना अगला एक शॉर्ट कोर्स करेंगे नेक्स्ट मंथ, तो उसमें देखेंगे कुर्बे क़यामत की क्या अलामतें हैं। तो क़यामत बदतरीन पे क्यों आनी है? क्योंकि क़यामत के सदमों में अल्लाह ईमान वालों को नहीं डालेगा। तो लिहाजा वलो असमाओ, ऐसे लोगों को अगर 4 दिन सुनने का मौका मिल भी जाए किसी के कहने पे, बहु मोरे दो भाग जाते हैं, बर्दाश्त नहीं करते ना, क्योंकि कुरान चोट डालता है। देखिए सेहतमंद अगर डॉक्टर के मुंह से सुने अच्छा ये बीमारी ये वजह ये वजह, तो सेहतमंद को तो अपने अंदर नहीं दिखती ना, तो वो तो खुशी खुशी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाएगा। बीमार बंदा डॉक्टर के पास गया हो, और ख़ासतौर पर वेस्टर्न स्टाइल में जिसमें कहते हैं कि मरीज़ को सारी बीमारी बता देते हैं, सुना होगा ना आपने, वहाँ मरीज़ का क्या हाल होता है, तुम्हें कैंसर भी है, तुम्हारे लंग्स भी ख़राब हो रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में भी खुन्नस है, ये है वो है दिस एंड दैट, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा ना। तो बीमार दिल वाले का दिल नहीं लगता कुरान की क्लास में कहीं भी। अब आप ये ना कहिए खुदा के लिए कि जो साथी आपके दोस्त आपकी बहनें कोई जिनको आप कभी कहते थे कहें वो नहीं आते वो बीमार है, नहीं, मैंने आपको 7 उजर दिए हैं गफलत के, कोई भी हो सकता है, फिक्र अपनी कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दिलों को जंग लग जाता है जैसे लोहे को जंग लगता है, और इस जंग को दूर कीजिए मौत की याद से। अकेले में बिस्तर पे बैठे, बल्कि लेट जाएंगे तो मोर जनियन हो जाएगा, और सोचिए मेरे पे नजाक का वक्त है, मेरी जान निकल रही है, अब फरिश्ते आ रहे हैं, अब मेरे कफन आ रहे हैं, अब मेरे पास ये हो रहा है वो रहा है, फिर अपने दिल को पूछिए कैसा फील होता है। एक सहाबी फौत हो रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि साथी क्या फील कर रहे हो? कहने लगे अल्लाह के नबी अपने गुनाहों से बड़ा डर लग रहा है, खौफ आ रहा है। कहा और कह, लेकिन अंदर एक छुपी हुई ख्वाहिश है कि देखना अल्लाह ने मुझे माफ़ कर देना। तो आपने फरमाया कि अंता मोमिन, क्योंकि अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा, ईमान खौफ और उम्मीद के बीच का नाम है। कि जो हमारा हाल नहीं होता, कभी खुश होके जाते हैं कभी रो के जाते हैं, ये होता है ना कुरान सुनते हुए, कभी लगता है सारा मेरे ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में ही अमल है, कभी लगता है सारा मेरे खिलाफ है, तो कभी गीले हो रहे हैं कभी सूखते हैं, जैसे गोश्त को थॉ करते हैं फिर फ्रीज करते हैं थॉ करते हैं, तो इससे दिल जिंदा रहता है। लेकिन जब सुनते नहीं है ना, तो बस जहन में रख लें कि गोश्त को फ्रीजर में डाल दें और 6 महीने भूल जाए, पत्थर का पत्थर बन जाता है। अगर डाला था तो वो हो सकता है आधा किलो था ना, तो आप 6 महीने के बाद निकालेंगे ना, तो वो कम अज कम 1.25 किलो का हो चुका होगा, पानी उसके अंदर बर्फ बन बन के जम चुका होगा। इस तरह जो लोग सुनने से खुद को दूर करते हैं ना, वो अपने दिलों को फ्रीज करवा लेते हैं, पत्थर दिल हो जाते हैं फिर वो लोग। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कॉल है, कहते हैं कि जो गुलाम 1 पैसे में चोर साबित हो जाए, क्या उसका मालिक उसको 1 लाख रुपया देगा? यदि 1 पैसा आप दे दें तो वो चोरी कर ले तो वो देगा? नहीं देगा ना। इसी तरह से आप देख लीजिए कि जो बंदा छोटी बात नहीं मानता, क्या अल्लाह उसको बड़ी बात करने का हुक्म देगा? छोटी छोटी बातों पे बंदा परेशान होता है। फिर आप एक आखिरी बात करके आगे चलते हैं कि अल्लाह ने ये क्यों कहा कि अगर उनको सुनवा भी देता, वलो असमाउ लतवल्लहु मोरिदून, कि अगर सुनवा भी देता फिर भी भाग जाते, क्यों? आप इसको यूँ समझिए कि खाना है, सेहतमंद जिस्म वो खाने को खाता है तो क्या होता है, वो खाना ताकत बनता है। लेकिन अगर बीमार स्टमक वाले को वही खाना खिलाएं तो क्या होता है, वॉमिट, ये वॉमिटिंग है, वह मोरी दो। कुरान बेहतरीन खाना है, ये तो शिफा है, ये तो फूड ऑफ द सोल है। जिनके स्टमक ख़राब हो चुके होते हैं ना, फिर वो इसको वॉमिट कर देते हैं। और ऐसे लोगों को इससे वाकई भी रिएक्शन हो जाता है। वो कहते हैं हम सच्चे हैं, तुम हमारी हालत नहीं समझते, लेकिन हकीकत यह है कि उनको अपनी बीमारी को दूर करना है। हालांकि हदीस में आता है कि कुरान ये वो दौलत है कि उलमा कभी इससे सैर नहीं होते और इसके सीखने के हुगर होते हैं। बड़ी तवील रिवायत है जिसका खुलासा यह है कि कुरान से मोहब्बत या कुरान को ज़्यादा सुनना या सीखना पढ़ना बंदे का सेहतमंद होने की अलामत है।